पिछले बार हमने चर्चा की कि यज्ञ जो अग्निहोत्र हम करते हैं आग में आहुति डाल के, उससे क्या प्रैक्टिकल फायदा हमें होता है हमारे घर के अंदर के वायुमंडल की शुद्धि से लेकर के बाहर के एटमॉस्फेयर में भी परिवर्तन आता है। अग्नि का धर्म है कोई भी चीज हम उसे डालें वो उसको शटल बना देता है और बहुत ज्यादा फैलाता है। हम गंदी चीजें जलाएं तो गंदे स्मेल बढ़ते हैं, गंदा एटमोसफियर बनता है। अच्छी चीजें डालेंगे तो अच्छा एटमोसफियर में वो अच्छे टर्म्स जाते हैं। आज जो हम चर्चा करने की जा रहे हैं यज्ञ की, जो ब्रॉडर सेंस में हमारे यहाँ हमारे कल्चर में यज्ञ का जो ब्रॉडर सेंस में यूज होता था वह होता है, उसके बारे में थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। जो यज्ञ शब्द हम जानते हैं ये तीन मीनिंग के साथ यज्ञ का जो संस्कृत में रूट होता है यज्ञ, जिससे यज्ञ शब्द बना, इसके तीन मीनिंग होते हैं। मतलब कोई भी काम में जब ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हो तभी जाकर के उस काम को यज्ञ कहते हैं। जरूरी नहीं कि अग्नि में एक पर्टिकुलर वे में कुछ अर्पण करने से कुछ ऑफरिंग करने से ही यज्ञ होता है। लाइफ का कोई भी काम किसी भी तरह का काम हो अगर ये तीनों चीजें आपके उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो वो आपका अपना काम, इवन आप ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर ये तीनों चीजें उसमें इन्वॉल्व है तो वो आपका इवन आपका प्रोफेशनल काम यज्ञ बन जाता है। यज्ञ का जिस रूट से यज्ञ बना यज्ञ धातु, उसके तीन मीनिंग होते हैं, दान चैरिटी गिविंग ऑफरिंग सैक्रिफाइस एंड देव पूजा वर्शिपिंग देवाज एंड यूनिटी संगतिकरण। ये तीनों जहां भी एक साथ घटने लगे तो उस हर काम को हम यज्ञ कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, बड़ा प्रसिद्ध और पॉपुलर ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण कहता है यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म, जो भी कर्म श्रेष्ठतम विच इज द बेस्ट एक्शन दोज ऑल एक्शंस विच आर बेस्ट आर कॉल्ड यज्ञ। बेस्ट क्या है उसको क्लैरिफाई करने के लिए जिस भी एक्टिविटीज में कुछ ऑफरिंग हो, कुछ चैरिटी हो, कुछ वर्शिपिंग का सेंस हो, जहां यूनिटी का सेंस हो, वो सब श्रेष्ठतम कर्म हो जाते हैं। दान, जैसे पिछले बार हमने चर्चा की थी, वो संसार हो या मेरी फैमिली हो या मेरा अपने का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, ये एक चीज पर डिपेंड करता है और वो है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं, हमारी एग्जिस्टेंस किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। वो मेरा अपना एग्जिस्टेंस हो, फैमिली का एग्जिस्टेंस हो, सोसाइटी की एग्जिस्टेंस हो, प्लानेट का एग्जिस्टेंस हो या यूनिवर्स का, एक दूसरे पर डिपेंड करते, ये इंटरडिपेंडेंसी। जब हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड करता है तो नेचुरली वहां टेक एंड गिव का रूल काम करता है, म्यूचुअल गिविंग एंड रिसीविंग का काम थ्योरी काम करता है। किसान अनाज पैदा करता है, कोई फैक्ट्री में मशीन पैदा करता है, कोई बाल काटता है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, ये सब अलग अलग एक्टिविटीज नहीं है, ये एक दूसरे म्यूचुअल सपोर्ट करने के लिए है। किसान अनाज नहीं पैदा करेगा तो आप करोड़ों डॉलर रखिए, खाना नहीं मिलेगा, भूखे मरेंगे, कागज खा के थोड़ी जिंदा रहेंगे। अगर पढ़ाने वाले नहीं पढ़ाएंगे तो आप अनाज ही खाते रहिए लाइफ में, तो कुछ और अचीव नहीं कर सकते। तो आपको हर किसी की जरूरत, क्लीन करने वाले से, गाड़ी ड्राइव करने वाले से, बाल काटने वाले से, पढ़ाने वाले से, हर किसी की जरूरत है। जब हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो जो रिजल्ट निकलता है वो मेरा लाइफ हो, मेरे फैमिली का हो, सोसाइटी का हो, कम्युनिटी का हो, स्मूथ रनिंग हो। और इसके लिए गिविंग एंड रिसीविंग जरूरी होता है। जिस भी कर्म में दान ना हो, देने की प्रवृत्ति ना हो, यज्ञ नहीं हो सकता। और यज्ञ क्या है, पिछले बार हमने चर्चा की, कोई भी काम आप अपने इंडिविजुअल के लिए करते हैं, सेल्फ के लिए करते हैं, वो काम है, इट्स जस्ट एन एक्टिविटी। जब वही काम आप कम्युनिटी के लिए करते हैं तो वो यज्ञ में कन्वर्ट हो जाता है। और यज्ञ सर्वाइवल टूल है, उसके बेसिस पर हम जिंदा हैं। अगर वो यज्ञ का कंसेप्ट नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इवन आप अनजाने में भी आप यज्ञ करते हैं, ब्रॉडर सेंस में आप कमाते हैं तो अकेला नहीं खाते। आप जितना भी कमाते हैं, बाई फोर्स हो, अपनी मर्जी से हो, आप कुछ ना कुछ देते हैं, सरकार जबरदस्ती टैक्स काट के ले जाता है। कुछ चीजें आप अपने आप देते हो, कहीं किसी को हेल्प करते हो, कुछ चैरिटी करते हो, कोई दान करते हो, किसी का हेल्प करते हो, करते हो, अकेले नहीं खाते। कम से कम जिसको आप फैमिली मेंबर मानते हो, अपने पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, ग्रैंड चिल्ड्रेन हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, उनके लिए कुछ ना कुछ आप करते रहते, अकेले नहीं खाते। तो आप कि नैरो वर्जन में यज्ञ तो करते हो तभी सरवाइव करते। जितना हमारा माइंड जितना ब्रॉडर होता जाएगा, जितना व्यापक होता जाएगा, तो हमारी जो दान की प्रवृत्ति है वो उतना ज्यादा बड़ी होती जाएगी। जो बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड है उनका यज्ञ छोटा होता है, मैं, मेरे बच्चे, मेरे परिवार। थोड़ा और बड़ा खुले दिमाग वाला, मेरे रिलेटिव, मेरे वेल विशर, मेरे फ्रेंड सर्कल, उनके लिए भी आप कुछ करते। थोड़ा और बड़ा माइंड वाले होंगे तो मेरा देश, मेरी सोसाइटी, मेरी कम्युनिटी, उनके लिए आप कुछ करते। थोड़ा आपका मन अगर और बड़ा हो जाएगा, आप कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, वो किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी कलर का हो, आपके साथ जान पहचान हो ना हो, कोई रिलेशनशिप हो ना हो, आप उसको हेल्प करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होते। कहीं सुनामी आती है, भूकंप आता है, कहीं बाढ़ आती है, तो आप लोग दान करते हो, कुछ ना कुछ हेल्प करते हो। नेचुरली आप छोटा हेल्प करते हो। अगर अनजान जगह कहीं दूर है, अगर वहां $100 देते हो, $10 देते हो, आपके अपने शहर में अगर ऐसी कोई कैलमिटी आए, हो सकता है आप $500 देते हो, $1000 देते हो। डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन कितना ज्यादा है, पर आप देते हो। क्योंकि आप देते हो, आप भी सरवाइव करते हो, दूसरा भी सरवाइव करता है। सरकार आपसे टैक्स जबरदस्ती लेता है या आप अपनी खुशी से देते हो, कोई भी रूप में आप देते हो, उसका फायदा क्या होता है? रोड बने हुए हैं जिसमें आप भी चलते हो, और दुनिया का हर आदमी चलता है। स्टोर्स बने हुए हैं जहां आपके कमाए हुए पैसे से आप कुछ खरीद सकते हो, नहीं तो आप पैसा अपने घर में रखो। अगर आपके पड़ोस में रोड ना हो, सीवर सिस्टम ना हो, पानी ना आता हो, तो पैसे लेकर क्या करेंगे? फिर अमेरिका छोड़ के भागेंगे, जैसे भारत छोड़ के अमेरिका है, तो अमेरिका छोड़ के और कहीं भागेंगे। ऐसे एक जगह ढूंढने के लिए जहां ये सुविधाएं हो, पैसा कम मिले चलेगा, सुविधा मिले। यज्ञ उस ब्रॉडर सेंस में कि मैं आई एम ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, मैं उस बड़े ब्रह्मांड का एक अंश हूं, मेरी भलाई उस सबकी भलाई के साथ जुड़ी हुई है, मैं अकेला खुश नहीं रह सकता। मेरे पड़ोसी में कोई बीमार हो, बहुत सीरियस हो, एक्सीडेंट हो गया हो, आज दिवाली है, मैं अपने घर में पटाखे नहीं फोड़ सकता, मिठाइयां नहीं बांट सकता पड़ोस, अगर बांटता हूं तो उस गिल्टी फीलिंग के साथ मैं फेस्टिवल को एंजॉय करता हूं। पहले तो एंजॉय आप कर ही नहीं सकते, अगर करते हैं तो देखना पड़ेगा आपकी साइकोलॉजी कैसी है, तमोगुण बढ़ गया हो। ये नहीं कहूंगा कि राक्षस वृत्ति बढ़ गई हो, ऐसे एक ही बात है, तमोगुण और आपको लगेगा भी नहीं। आप कभी भी आपके घर में कोई मेंबर बीमार पड़ा हो, आप कैसे एंजॉय कर पाते हो? नहीं कर पाते। आपकी सिटी में बाढ़ आई, 8-10 लोग मरे, सबको बेचैन, सबको परेशान, सबको बुरा लगा, ये स्वाभाविक है, इसी को कहते हैं यज्ञ। जब आप सबकी भलाई में अपनी खुशी देखते हो और इसीलिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हो कि सबकी भलाई जिसमें हो उसमें आपकी भी भलाई छुपी हो, ऐसा नहीं कि हम कुछ एहसान कर रहे हैं, क्योंकि रोड जो बना है वो मुझे भी फायदा करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर तक पहुंचती है वो मुझे भी फायदा करता है, ये कम्युनिटी डेवलप्ड होता है तो मुझे भी फायदा करता है, मेरे बगल में जो अच्छा सा स्कूल बना हुआ है वो मुझे ही फायदा करता है, इसीलिए आप कम्युनिटी चेंज कर देते हो क्योंकि आपके अपने बच्चे को अच्छा स्कूल चाहिए। पैसा लेकर किसी भी कम्युनिटी में क्यों नहीं रह सकते हो? क्योंकि आपके बच्चे को पढ़ाई नहीं मिल पाएगी, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपके लिए एक अच्छी कम्युनिटी की जरूरत है, और कम्युनिटी अपने आप तो बनती नहीं है, गिविंग एंड टेकिंग रिलेशनशिप से बनता है, इसीलिए जब अच्छी कम्युनिटी में जाते हो तो टैक्स भी अच्छा देते हो, स्वाभाविक है, फ्री में नहीं ले सकता, इसी को कहते हैं दान। दान जिससे मैं भी सरवाइव करूं, पर मेरी सर्वाइवल डिपेंड करता है दूसरे भी ठीक ठाक रहे, इसी को गीता में कहा, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा गुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्व मीषवोस्तु इष्ट कामतो। संसार की जब सृष्टि हुई, यूनिवर्स क्रिएटर, वो जो क्रिएटर है परमात्मा प्रजापति, प्रजापति मतलब लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, प्रजापति ने क्रिएटर ने क्या किया, जब पैदा किया लोगों को मनुष्यों को, उनके साथ यज्ञ को भी पैदा किया, उनके साथ यज्ञों को भी दिया और बोला, क्या बोला, अनेन प्रसविष्यत्वम, इसी से ही तुम बढ़ोगे और यही तुम्हारे सभी इच्छाओं का पूरा करने वाला है, यही यज्ञ। वो यज्ञ कौन सा यज्ञ है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं ब्रॉडर सेंस में, इसमें दान, देव पूजा और संगतिकरण, एक दूसरे को वो देना, रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे के साथ मिलना, ये यूनिवर्स भी उसी से बना है ना, अकेला सूरज आकाश में लटक थोड़ी सकता, पूरे सिस्टम गैलेक्सी, अकेला पृथ्वी थोड़े ही लटक के रह सकती, नहीं रह सकती, अगर कोई दूसरा प्लैनेट ना हो, कोई दूसरा स्टार ना हो, अकेली पृथ्वी थोड़ी रहे, एक दूसरे को खींच के बनाए रखते, ऐसा थोड़ी है कि केवल पानी मिलेगा और गर्मी ना हो केवल ठंड होगा, हो ही नहीं सकता, एक दूसरे को सपोर्ट करते, पानी होगी तो धूप भी होगा, हवा भी होगा, होंगे तो पशु पक्षी भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे, पेड़ पौधे कार्बन लेते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं, आप ऑक्सीजन लेते हो उनको कार्बन देते हो, म्यूचुअल गिविंग एंड टेकिंग नेचर में, सार यह कि ईश्वर ने सृष्टि के साथ बोला कि अगर जीवन में उन्नति करना है तो यज्ञ के द्वारा करो। वो कौन सा यज्ञ जीवन में, दूसरों की भलाई में तुम्हारी भलाई छुपी हुई है, जो कमाते हो अकेले मत खाओ, शेयर करके खाओगे तो तुम भी बढ़ोगे, तुम्हारे आसपास के लोग भी बढ़ेंगे, जब सब बढ़ेंगे तो तुम भी बढ़ जाओगे, आगे ठीक इसी के गीता में श्री कृष्ण लिखते हैं, यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयिहि कुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ध्यान दीजिएगा इसका पहले लाइन को और दूसरी लाइन को एक दूसरे में कैसे आप समन्वय बनाते। कहा कि जो लोग यज्ञ का बचा हुआ प्रसाद, प्राचीन वैदिक भाषा में चरु बोलते हैं, जो आप यज्ञ में आहुति देते हो उसके बचे हुए जिसको आप प्रसाद के रूप में यूज करते हो, उसको जो लोग खाते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि जो हम अग्निहोत्र करते हैं, आग में आहुति देते हैं और साथ में जो हलवा बनाते हैं, उस हलवा को खाने से पाप से मुक्ति मिले। अगर यही मीनिंग है तो अगली लाइन सुनिएगा, जो उसको सप्लीमेंट करता है, गुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। और जो लोग अकेले अपने लिए ही खाना पकाते हैं वो सब पाप खाते हैं। मतलब यज्ञ का बचा हुआ प्रसाद खाने से पुण्य खाते हो और अकेले पकाकर खाने से पाप खाते हो, वो पूरा सेंटेंस है। तो अकेले खाने का अपोजिट क्या है? यज्ञ से बचा हुआ खाना। तो इसका मतलब हलवा की बात नहीं हो रही, समझ में आई? मतलब मत सोचना कि अब हलवा खाएंगे तो पाप से मुक्ति मिलेगी। यज्ञ अपोजिट है किसका? अकेले खाने का। जब तुम कमा के शेयर करके खाते हो तो पुण्य खाते हो, जब कमा के अकेले खा जाते हो तो पाप खाते हो। ऐसा नहीं कि आप मत सोचिए कि डरिए मत कि हम तो ऐसा कुछ करते नहीं है तो पुण्य तो हम नहीं, आप रोज करते, आप कमाते हो। अगर आप 100 कमाते हो, $1,000 कमाते हो, कितना खाते हो? आपके हिस्से में तो मुश्किल से $1-2 पड़ता होगा। पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं, फ्रेंड्स के घरों में जाते हैं, शादी में, ब्याह में। शगुन देने की परंपरा क्यों बनी पता है? ये उस यज्ञ का भी एक बिगड़ा हुआ रूप। आज भी गांव में, भारत के गांव में, जिसके घर में कोई शादी ब्याह होता है या कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो लोग उसके घर में जब आते हैं शगुन लेकर के आते हैं। आजकल तो लिफाफा में पकड़ देते हैं, तो उन दिनों क्या करते थे? अब जिसके घर में आलू है वो आलू लेकर के आता है, जिसके घर में चावल है वो चावल लेकर आता है, जिसके घर में आटा है वो आटा लेकर आता है, जो गुड़ बनाता है गुड़ लेकर आता है। क्यों? क्योंकि अचानक उसके घर में इतना बड़ा खर्चा, वो अकेला कैसे करे? उन दिनों कोई सेविंग सिस्टम तो था नहीं इतना ज्यादा। आज भी जब आप शगुन लेकर के किसी के घर जाते हैं तो वन वे आप उसको हेल्प करते हैं। अब आप वो अलग बात है कि आजकल हम अपने आप इतने मजबूत है कि हमें किसी की ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, पर उसके पीछे भावना वही थी शगुन के पीछे कि किसी के घर में कोई ब्याह है, शादी है, मौत है या कोई ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा है, लोगों को जरूरत है, तो लोग आते हैं, कोई हेल्प करता है, कोई फिजिकली हेल्प करता है, कोई फाइनेंशियली हेल्प करता है, कोई और सामान दे जाता है। एक साथ मिलजुल के घर में, किसी के घर में शादी है तो सब गांव वाले इन्वॉल्व, कोई बुलाने ना बुलाने की जरूरत नहीं, सब आते, सब काम में लगे रहते। अगर किसी को काम नहीं मिला वो दुखी रहता था कि इसका मतलब है कि वो मुझे पसंद नहीं करता है, मुझे प्यार नहीं करता या मुझे शत्रु समझता है, मुझे कोई काम नहीं मिलता। काम ना देने को बुरा माना जाता था क्योंकि वो सोचता था कि ये मेरी राइट है, ड्यूटी नहीं, कि अगर किसी के घर में कुछ है तो मैं वहां काम करूं, हेल्प करूं, ये मेरी राइट है। अब धीरे धीरे ये कंसेप्ट खत्म हो गया। आज भी हम दूसरे फॉर्म में हेल्प करते हैं, हम एनजीओस को हेल्प करते हैं, अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यज्ञ नहीं करते, आप अकेले नहीं खाते, आपकी कमाई का बहुत छोटा सा हिस्सा आप यूज करते हो, बड़ा हिस्सा आप सेव कर देते हो अलग बात है, पर आपको थोड़ा ही मिलता है, वो तो आपके बच्चों को मिलता है। तो संस्कृत नीति शास्त्र में बड़ा सुंदर श्लोक है, कहते हैं धनस्य तिस्रो दशा, पैसे के तीन ही तरह की गति होती है, तीन तरह के स्टेट्स होते हैं, दानम भोग तृतीयस्तु नाश, या तो आप भोगिए एंजॉय करिए उस पैसे को जो कमाया, या दूसरों को हेल्प करने में दीजिए, जिसने दान नहीं किया या खुद भी भोगा नहीं तो उस धन की तीसरी गति होती है कि वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आपके बच्चे बिना मेहनत करके भोग लेते हैं या और किसी तरह से नष्ट हो जाता होगा, आपके काम में नहीं आता। तो देवियों सज्जनों, हमारी कमाई जब दूसरों के को शेयर करते हुए हमारे उपयोग में आता है तो वो यज्ञ बन जाता है, जो सिर्फ हमारे काम में आता है तो नॉर्मल भोग हो जाता है। तो अगेन, जितना ब्रॉडर सेंस में आप इसको शेयर करते हैं उतना यज्ञ आपका बड़ा होता है, उतने आपकी सुखी रहने की चांसेस ज्यादा होते। अभी जैसे भारत में आपने न्यूज वगैरह सुना होगा, पता चला कि भारत में पता है 125 करोड़ लोग हैं और कम से कम 50-60 करोड़ से तो कम गाड़ियां नहीं है। और आपको पता है कितने लोग टैक्स देते हैं सरकारी नौकरों को छोड़ देते हैं? सात लाख लोग भारत में ऑफिशियली हैं जो टैक्स देने लायक। लोगों के घर में चार चार गाड़ियां है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पर वो गरीब टैक्स नहीं। उसका रिजल्ट क्या होता है, कंपेयर करिए यूएसए के साथ, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपके रोड कैसे हैं, आपके स्कूल्स कैसे हैं, आपके हॉस्पिटल्स कैसे हैं, कंपेयर करिए। फिर हम रोते रहते हैं भारत में बड़ी समस्या बड़ी कि टैक्स देना भी प्राचीन भाषा में यज्ञ का है, किसका है? आप एक ब्रॉडर सेंस में आप शेयर कर रहे हैं, क्यों दें? अगर आपको कभी ऐसा विचार आए मैंने खुद कमाया अपनी मेहनत से कमाया मैं क्यों दूं, तो ऋग्वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, कहता है समोचितहस्तौ न समं विवेष्ट सम्मातरा चिन्न समं दुहाते यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि ज्ञाति चित्संतौ न समं प्रणीतः। बोले देखो ये तो नेचर है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, सागर बड़े गहरे होते हैं। अब कहोगे क्यों सागर गहरा है, पहाड़ क्यों ऊंचे हैं, पहाड़ ऊंचे हैं तो वो बड़े हैं, सागर गहरा है तो वो छोटा है, ऐसा नहीं। कोई फल खट्टा है कोई मीठा है, आपको पसंद नहीं होगा खट्टा फल, पर उसकी अपने यूज, सबकी अपनी अपनी यूज। आपके दोनों हाथ हैं, ये दोनों आपके ही हाथ हैं, किसी दूसरे के पड़ोसी से आपने किराए पर नहीं लिया, बस दोनों अलग अलग तरह के काम कर। जो राइटिस्ट है, जो राइट हैंड वाला है, उसका राइट हैंड ज्यादा मजबूत है, ज्यादा काम करता है, लेफ्ट हैंड में वो 10% भी नहीं कर पाता। जो लेफ्टी है, जिसका बायां हाथ ज्यादा चलता है, उसके राइट हैंड में 10% काम नहीं होता। हाथ तो दोनों आपके ही हैं, बराबर हैं, पर दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो आपको हेल्प करने की जरूरत है, एक ही गाय के दोनों बच्चे हैं, पर दूध दोनों अलग अलग मात्रा में देते हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर हैं, एक ही माँ बाप के, ऐसा नहीं कोई आगे पीछे भी पैदा हुआ है, जुड़वा है, ट्विन है, तब भी दोनों का एटीट्यूड अलग है, नेचर अलग है, एबिलिटी अलग है, पोटेंशियल अलग है। इसलिए ये मत कहो कि ये मेरे परिश्रम से कमाया, उसने गरीब है तो मेहनत नहीं किया, ऐसा नहीं। कोई मेहनत करके भी नहीं मिलता, कम मेहनत करके भी मिलता है। उसकी अलग, उसकी अलग एनालाइजेशन है कि क्यों होता है। पर ये फैक्ट है कि दोनों व्यक्ति एक तरह का काम करने पर भी जरूरी नहीं दोनों को एक जैसा रिजल्ट मिले। कोई किसी को ज्यादा जरूरत पड़ेगी, किसी को कम जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जिसके पास ज्यादा है वो उसकी ड्यूटी है कि वो कुछ शेयर करे। अगर नहीं करते हो तो ऋग्वेद का मंत्र है, मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि बधयेत् सदस्य नार्यमाणं पुष्यति नो सखायम् एव लाघो भवति केवलादिः। बोला जो अप्रचेत, जो मूर्ख व्यक्ति, जो अकेला खाता है, अकेला कमाता है और अपने लिए ही खर्च करता है, यकीन मानिए वो उसका मौत है। जो अपने फ्रेंड्स को, अपने वेल विशर को, अपने रिलेटिव को, अपने फैमिली मेंबर को या कोई नीडी आदमी को नहीं देता है, अकेले खाता है, तो केवल आगो भवती केवल आदि। जो अकेला खाता है वो सिवाय पाप ही खाता है और कुछ नहीं खाता है। अगर कोई ऐसा समझता हो कि मैं बहुत कमाता हूं और मैं बहुत तरह के खाता हूं, वो गरीब है उसको मैं क्यों दूं, उसको रहने की हक नहीं है, तो वेद कहता है देखो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। जो नहीं खाता है वो भी मरता है, जो खाता है वो भी मरता है। फर्क इतना है, एक बिना खाए मरता है, खा खा कर मरता है। आजकल दो तरह की बीमारियां हैं, गरीबों की बीमारी अपना है, माल न्यूट्रिशन में हजारों बीमारियां होती है, किडनी खराब है, लिवर खराब है, ये खराब है, वो खराब है। दूसरी बीमारी खाते पीते खाने पीने की बीमारी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, दुनिया भर के प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दोनों को सहना, शरीर से मन से दोनों को ही सहना पड़ता है, मरना दोनों को ही होता है, जो गरीब है जो धनी है। ये मेरा वाक्य नहीं, वेद की बात। इसीलिए अच्छा है कि जिसके पास है तो शेयर करे, जिसके पास नहीं है कम से कम पुण्य का। तो यज्ञ का जो पहला रूल है वह कि देना। और जब आप अग्नि में आहुति देते हैं तो उसमें भी पहला काम आप यही करते हैं। उसकी दूसरा पीलर है यज्ञ का देव पूजा। देव पूजा मीन्स वर्शिपिंग, देवास डोंट ट्रांसलेट इट वर्शिपिंग गॉड, ईश्वर तो एक ही है। तो देव कौन है? पहले हमने बहुत बार चर्चा की है, बहुत ओकेजन में, बहुत प्रसंग में हमने ईश्वर, भगवान, देवता, परमात्मा, इन सब की चर्चाएं हमने डिटेल में बहुत बार की है। आप में से बहुत सारे को पता हो देवता का मतलब देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा दिवस्थाने भवती। तो देव शब्द का जो लिटरेरी मीनिंग है संस्कृत में, जिस अर्थ में देव शब्द हमारे लिटरेचर में यूज हुआ है, इट्स ऑल अबाउट हु गिव्स, हु इल्यूमिनेट्स, हु काइंडल्स एंड द सेलेस्टियल एंटिटीज। मतलब जो कोई हमें कुछ देता है, हमें इल्यूमिनेट करता है, प्रकाशित करता है, या खुद प्रकाशित होता है, या जो सेलेस्टियल मतलब जो तारे प्लैनेट्स वगैरह हैं जिनके कारण हम सरवाइव करते हैं, वो सब देवता है। अगर सिंपल वे में कहा जाए, जिनका भी हमारे लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन है हमारी सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, जैसा हम हैं उस ऐसा होने के लिए जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जिस चीज का कंट्रीब्यूशन है, वो सब देवता है। हवा हो, पानी हो, पेड़ हो, पौधा हो, ऑक्सीजन हो, आकाश हो, सूर्य हो, प्लानेट हो, आपके रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, आपके टीचर हो, स्कूल हो, डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, किसान हो, पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, नोइंगली अननोइंगली। आप नहीं जानते कि आपके लाइफ में किसका कंट्रीब्यूशन है, ये आपका प्रॉब्लम है, इसका अर्थ नहीं है कि उसके लाइफ आपके लाइफ में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे कोई कीड़ा है, मकोड़ा है, कोई सांप है, बिच्छू, इन सबका भी आपके लाइफ में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, आपको नहीं पता वो अलग बात है। तो ये सब हमारे लिए देवता होते हैं। ईश्वर भी महादेव है, सभी देवताओं को जिनको हम देवता मानते हैं उनकी भी पालन पोषण, उनका भी रखवाला करने वाला परमात्मा है। पर देव शब्द ईश्वर के लिए नहीं, कहते हैं मातृदेव भव, माँ भी देवता है, पिता भी देवता है, पेड़ भी देवता है, पानी भी देवता है, हम उन लोगों की चर्चा करते हैं। ऐसी देवताओं की पूजा करना, वर्शिप करना, उनको रेस्पेक्ट करना, उनका ख्याल रखना, ये देव, ये भी वन अनदर एस्पेक्ट ऑफ यज। सोसाइटी में सिर्फ देने से नहीं होगा, आप सिर्फ कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे नहीं हो, आपके मन में वो ह्यूमिलिटी होना चाहिए, वो ग्रैटिट्यूड का सेंस होना चाहिए, तभी यज्ञ होगा। केवल देने वाला तो एरोगेंट हो जाता है, उसको लगता है कि सारी दुनिया उसी के कारण चलती है, फिर वो ज्यादा खतरनाक है। उसके अंदर वो सेंस होना चाहिए, वो दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्योंकि उसका लाइफ भी दूसरों की कंट्रीब्यूशन है, वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। जब उसको ये समझ में आएगा उसके लाइफ में भी दूसरों का कंट्रीब्यूशन है, और बड़ा सेल्फलेसली कंट्रीब्यूशन है, बड़ा नेचुरल वे में कंट्रीब्यूशन है, कोई आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई पेड़ आपसे कुछ नहीं मांगता, कोई ऑक्सीजन आपसे बदले में कुछ नहीं मांगता, कोई आकाश नहीं मांगता, कोई सूर्य आपसे नहीं मांगता, पानी नहीं मांगता, पर यह आपकी ड्यूटी है कि आप उनको केयर करो, उनका ख्याल रखो। नहीं रखोगे तो देखो आजकल हम कितने परेशानी में है, पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारे समस्याएं हो रही है। उसका मूल कारण है कि हम उस देव पूजा से छूट गए, जो हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए हमारा कुछ कर्तव्य है, उनको रेस्पेक्ट देना, वो हम बोल। मैंने बहुत बार पहले भी कहा है, कभी कभी रिपीटेशन हो जाता है, तो कभी कभी कुछ रिपीटेशन अच्छे होते हैं। भारत में हम आम हिंदू लोग हर तरह की चीजों को पूजते हैं, सांप को, गाय को, पानी को, सबको पूजते हैं। सेंस यही था कि सब देवता है और सबका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, तो यू हैव टू शो आवर रेस्पेक्ट टू एवरी। बट द वे वी आर वर्शिपिंग, वो क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्योंकि रेस्पेक्ट करने का मतलब किसी को खुश करना, किसी को फील कराना कि आप मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा कोई फील मुझे नहीं हो रहा है, मैं भूखा पड़ा हूं, बीमार पड़ा हूं, तड़प रहा हूं, आकर लेकर का आरती उतार रहे हो, जय आचार्य जी जय जय, तो मैं थोड़े ही खुश होऊंगा, मैं तो गालियां दूंगा, गुस्सा करूंगा, यार मैं बीमार पड़ा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर के पास ले जाओ, कुछ खाना खिला दो, कुछ कर दो, अब आरती उतार रहे। किसी व्यक्ति को ये फील कराना कि आप मेरे लिए कितना इंपोर्टेंट, ये रेस्पेक्ट है। और क्रिश्चियन में भी आप देखेंगे किसी के घर में कोई पूजा हवन कुछ भी होता है, जी ये फूल का क्या करें, नारियल का क्या करें, इसको फेंको, नारियल खा लीजिए, नहीं, हमें तो बताया गया कि इसको पानी में फेंकना है। भारत में तो सारी नदियां गंदे कर चुके हो ऑलरेडी, गंगा यमुना को सड़ा चुके हो पूजा कर करके, ये अमेरिका की बारी पड़ी है, यहाँ के नदियों को, नालों को, कैनालों को गंदे करने के लिए आ गए यहाँ, कम से कम यहाँ के नदी नालों को तो साफ रखो, सब पानी में डालो। तो ये स्टुपिडिटी है और कुछ नहीं है। अगर आपको पानी की रेस्पेक्ट करना है तो पानी को साफ रखो, उसको बहने दो, पीने लायक रखो, दैट्स योर रेस्पेक्ट। जिस दिन आप इन सबका रेस्पेक्ट रियल वे में करने लगोगे तो इकोसिस्टम ठीक हो जाएगा। लास्ट वन कह के बात खत्म करेंगे, अच्छा वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। इस प्रसंग में एक बड़ा सुंदर गीता का श्लोक है, इसी को कोट करके बात समाप्त करते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्प
परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। देखिए कितना सुंदर श्लोक है, और हजारों साल पहले लिखे गए श्लोकों को आप आज के तारीख में आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए कितना प्रैक्टिकल, इवन आज के डेट में भी कितना 100% प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। क्या कहते हैं कृष्ण कि तुम देवताओं को प्रसन्न रखो, नेचुरली देवता तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। एक दूसरे को प्रसन्न रखोगे तो सब खुश रहोगे। अब ये देवता नहीं कि आप गणेश को पूजने से गणेश खुश रहेगा, तुम्हारा बेटे की पढ़ाई ठीक रहेगी, दुर्गा को पूजाओगे तो ये फायदा होगा, लक्ष्मी को पूजोगे तो धन आता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आप बिना काम करे लक्ष्मी को पूजते रहो थोड़े ही घर में धन आता, ये ऐसी देवताओं की बात नहीं कर रहे। जिनकी चर्चा हमने की, तुम उस पानी की केयर करो, तुम इस हवा का केयर करो, तुम इस जंगल का केयर करो, तुम उस गाय का केयर करो, तुम अपने माता पिता का केयर करो, तुम अपने टीचर्स की केयर करो, तुम अपने ऋषि मुनियों का केयर करो। फिर देखो तुम किसान का केयर करते हो, किसान तुम्हारा केयर करता है, तुम उसे डॉलर देते हो, वो तुम्हें गेहूं देता है, वो भी खुश तुम भी खुश। तुम पानी को साफ रखते हो तो पानी तुम्हें पीने के लिए मिलता, पीने के लिए मिलता है, नहाने के लिए मिलता है, खेती करने के लिए मिलता है। तुम एटमॉस्फेयर को साफ रखते हो तो तुम्हें साफ ऑक्सीजन मिलता है, तुम उसको खुश रखो वो तुम्हें खुश रखेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्रसन्न शब्द है ना, प्रसन्न संस्कृत हैप्पी, उसका लिटरेरी मीनिंग है क्लैरिटी, क्लीनलीनेस। खुशी के साथ क्यों जुड़ा? जब आपका मन क्लीन हो जाता है, प्योर हो जाता है, तो आपके एक अजीब सी खुशी होती है। खुशी कभी भी मैले मन वाले को नहीं आता। इवन जिस वक्त आपका मन मैला हो, मान लीजिए आप गुस्से में हो और आपको पता चला कोई अच्छी न्यूज भी मिली, तो भी आपकी वो खुशी नहीं आ पाती। अगर आप पूरी जेलेसी में हो और तभी आपको कोई बढ़िया सा खबर मिला, तो भी आप उस बढ़िया खबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपका मन बड़ा बेचैन है, मैला है। साफ मन में प्रसन्न खुशी होती है। इसीलिए प्रसाद या जो प्रसन्नता का अर्थ है क्लीनलीनेस, प्यूरिटी। तो जब आप देवताओं को प्रसन्न रखोगे, माँ बाप खुश रहेंगे, तुम्हारे बच्चे खुश होंगे, तो तुम खुश। एक दूसरे को जब ख्याल रखोगे, जब म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगा, म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप बनेगा, तो पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम अच्छा रहेगा। तो जब सब कुछ ठीक रहेगा तो तुम भी ठीक रहोगे। ये यज्ञ का दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, संगतिकरण, और आगे की भी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम जानेंगे यज्ञ के बारे में, अगले बार जानेंगे।